बुल्ले शाह का जीवन काल, पृष्ठ 20। 1680 ईसा पूर्व से 1758 ईसा पूर्व तक का बुल्ले शाह का जीवन काल कुछ अंश में तो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल के तथा कुछ अंश में उसके उत्तराधिकारियों बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 1713, फरूक सियर 1713 से 1718, मोहम्मद शाह 1720 से 1747, अहमद शाह 1748 से 1754 और आलमगीर 1754 से 1759 के शासनकालों के अंतर्गत आता है। औरंगजेब ने 1658 ईसा पूर्व से 1707 ईसा पूर्व तक शासन किया। बुल्ले शाह का जन्म औरंगजेब के शासन के 21वें वर्ष में हुआ। बादशाह की मृत्यु के समय बुल्ले शाह 27 वर्ष के थे। अपने जीवन के शेष 51 वर्ष उन्होंने औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बिताए। बुल्ले शाह का जन्म पंजाब में हुआ था और इन्होंने वहीं पर समस्त जीवन व्यतीत किया, अतः पंजाब की तत्कालीन स्थितियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। औरंगजेब के हुक्म पर सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जब वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उसके 5 वर्ष बाद बुल्ले शाह का जन्म हुआ था। बादशाह कट्टर सुन्नी था और अहमद सुरंदी का शिष्य था। वह समूचे भारत को इस्लामी देश बनाना चाहता था। वह हिंदुओं को पूर्ण रूप से मुसलमान बनाना चाहता था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पहले तो शांतिपूर्ण ढंग अपनाए गए। जब शांतिपूर्ण उपाय विफल रहे तो उन्हें पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। जब यह ढंग भी असफल रहा तो घोर दंड की धमकी दी गई। जब सभी तरीके निष्फल हो गए तो हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। हिंदू मंदिरों को तोड़ गिराने के आदेश दे दिए गए। गायों को मारकर उनके मांस को पीने वाले पानी के कुओं में फेंका जाता था ताकि पानी अशुद्ध हो जाए। हिंदुओं को डराने धमकाने के लिए अनेक क्रूर ढंग अपनाए गए। उन्हें उच्च पदवियों पर से हटा दिया गया और उन पर भारी कर लगाए गए। पंजाब में सिख आंदोलन को दबाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। धार्मिक स्वतंत्रता का महान विरोध किया जाता था। धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही गुरु तेग बहादुर ने अपनी बलि चढ़ा दी। भारत के इतिहास में यह अविस्मरणीय दिवस था। नक्शबंदियों के अतिरिक्त अन्य सभी सूफियों ने इस अन्याय को घृणित माना। चिश्ती और कादरी सूफी संतों ने सिख आंदोलन की बड़ी सराहना की। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सिखों के ग्रंथ आदि ग्रंथ में फरीद शकर गंज के पदों को भी सम्मिलित किया है। फरीद चिश्ती संप्रदाय के एक सुविख्यात सूफी कवि थे। महान कादरी संत मियां मीर ने जहांगीर के आदेश पर की गई गुरु अर्जुन देव की हत्या की निंदा की। उन्होंने ही हरमिंदर अर्थात स्वर्ण मंदिर साहिब की नींव रखी थी। अपने पूर्वजों की भांति बुल्ले शाह भी गुरु तेग बहादुर के शहीद होने के बाद सिख आंदोलन के उदय के साक्षी थे। अपने एक काफिये में उन्होंने गुरु के इस बलिदान का महान श्रद्धा पूर्वक वर्णन किया है। उन्होंने कहा, किते चोर बने किते काजी हो, किते मेंबर ते वेह वाजी हो, किते तेग बहादुर गाजी हो, आपे अपना कटक बनाई दा, हुड़ किस तो आप लुकाई दा। अर्थात कहीं आप चोर हो, कहीं काजी अर्थात न्यायाधीश हो, कहीं मंच पर चढ़े प्रचारक हो और कहीं शहीद गुरु तेग बहादुर हो, आप अपनी सेना स्वयं बनाते हो, अब आप स्वयं को किससे छिपा रहे हो। बुल्ले शाह की एक लोक प्रसिद्ध सूक्ति है, जो गुरु गोविंद सिंह के प्रति सम्मान के प्रति महान श्रद्धांजलि जी की सूचक है। ना कहूं जब की, ना कहूं तब की, बात कहूं मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोविंद से सुन्नत होती सबकी। अर्थात मैं अतीत की बात नहीं करता, मैं तो वर्तमान की बात करता हूँ। यदि गुरु गोविंद से नहीं होते तो हर एक व्यक्ति को इस्लाम में बदल दिया जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि कादरी संत स्वतंत्र विचारों के थे और उन्हें औरंगजेब की धर्म परिवर्तन की यह नीति पसंद नहीं थी। उन्होंने पिता के प्रति परमेश्वर का तथा मानव के प्रति भ्रातृत्व भावना का प्रचार करने वाले भारतीय संतों की प्रशंसा की। गुरु गोविंद सिंह का स्वर्गवास 1708 ईसा पूर्व दक्षिण भारत में नंदेड़ में हुआ। दसवें गुरु के पश्चात बुल्ले शाह 50 वर्ष तक जीवित रहे। 18वीं शताब्दी का यह समय पंजाब में विप्लव और अशांति का काल था। बंदा सिंह बहादुर, जिसने हाल ही में ही सिख धर्म अपनाया था, को किसी कार्यवश स्वयं गुरु के ने दक्षिण से भेजा। उसका उद्देश्य था दुष्ट बादशाहों और प्रजा पीड़कों को दंड देना। सरहिंद को लूटने से पहले उसकी सेनाओं को कई शहरों और नगरों से गुजरना पड़ा। तत्पश्चात जालंधर दोआम पृष्ठ 22 पर कब्जा किया। मुसलमानों ने हैदरी झंडा नामक हरा ध्वज उठाकर सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध की घोषणा की। इस धर्म युद्ध में मुसलमानों की घोर पराजय हुई। तब बादशाह बहादुर शाह ने सिखों के विरुद्ध भारी सेना भेजी, किंतु बंदा बहादुर अपनी सेना सहित पर्वतों पर चला गया। वह यदा कदा छोटे पर्यटनों पर निकलता था। फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और फिर उसके पुत्र जहांदार शाह ने गद्दी संभाली, जिसे सन 1713 के आरंभ में ही फर्रुक सियर ने निष्कासित कर दिया था। आखिर नया बादशाह बंदा को उसकी सेना सहित पकड़ने में सफल हो गया। उन्हें पहले लाहौर ले जाया गया और फिर दिल्ली, जहां 9 जून 1716 को बड़ी निर्दयता पूर्वक बंदा का शीश काट दिया गया। बंदा बहादुर सिंह को मार देने के बाद फर्रुक सियर ने यह आदेश जारी कर दिया कि सिखों को गिरफ्तार करके मुसलमान बनाया जाए और यदि वह मुसलमान बनने से इनकार करे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। प्रत्येक सिख के सिर पर इनाम रखा गया। इस प्रकार से सैकड़ों सिख मारे गए। धीरे धीरे यह राज आदेश केवल बंदा के आंदोलनों में भाग लेने वाले सिखों तक ही सीमित कर दिया गया। पर्वतों में छिपे सिख शांतिपूर्ण जीवन यापन करने के लिए मैदानी स्थानों पर आ गए, किंतु यह स्थिति तो अस्थायी थी। सन 1726 में लाहौर के राज्यपाल अब्दुस समद खां का तबादला मुल्तान में हो गया था और उसके पुत्र जकरिया खां को, जो खान बहादुर के नाम से भी प्रसिद्ध था, उसे लाहौर के राज्यपाल का पद सौंपा गया। उसने इस शूरवीर सिख जाति का नाश करने के लिए कठोर कदम उठाया। फिर से सिखों की खोज की गई और उनके सिर पर इनाम रखे गए, जिसके परिणाम स्वरूप सिख पुनः छिप गए। अनेक वर्षों तक उनका पीछा किया गया और अंततः शासक वर्ग उनसे थक गया। अब वह सिखों को शांत करने का प्रयास करने लगे। सन 1733 में फैजुलपुर के कपूर सिंह को जागीर के साथ साथ नवाब की उपाधि प्रदान की गई। इससे सिखों के ने चैन की सांस ली और उन्होंने अपने अपने घरों को जाना आरंभ कर दिया, किंतु यह स्थिति भी स्थायी नहीं थी। नवाब कपूर सिंह के निर्देशन में दो दल बन गए, एक बुढ़ा दल, दो तरुण दल। तरुण दल की उत्साहपूर्ण गतिविधियों ने सरकार को भयभीत कर दिया और इसके फलस्वरूप नवाब को दी गई जागीर को सन 1735 में सरकार ने जब्त कर लिया। फिर सरकार के साथ लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी पुनः प्रतिक्रिया हुई। सिखों की हत्याएं फिर से आरंभ हो गई। भाई मनी सिंह, भाई तारू सिंह और मीरन कोट के मेहताब सिंह की हत्या कर दी गई। सन 1745 में जकरिया खान ने उसका पद संभाला। उसने और भी ज्यादा क्रूरतापूर्वक सिखों का वध जारी रखा। उसके हिंदू मंत्री दीवान लखपत राय भी अपने भाई जसपत राय, जो कि अमीनाबाद का फौजदार पृष्ठ 23 था, की मृत्यु पर सिखों के प्रति क्रोध से भभक उठे। याहिया खां और लखपत राय के निजी नेतृत्व में सिखों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार की गई। सिखों की संख्या लगभग 15,000 थी। इस युद्ध में, जिसे घल्लू घारा या आहुति कहा जाता है, सिखों की महान क्षति हुई। मार्च 1747 में याहिया खां को उसके छोटे भाई शाह नवाज खां ने निष्कासित कर दिया। दिल्ली सरकार ने उसे राज्यपाल के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने काबुल के बादशाह अहमद शाह दुर्रानी को भारत पर आक्रमण करने को बुलाया। अपने राजदूतों के प्रति उसका कठोर व्यवहार होने के कारण उसे लाहौर से भागना पड़ा। अहमद शाह दुर्रानी ने लाहौर आने पर जल्हे खां नामक कसूर के अफगानी नेता को लाहौर का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। मोमिन खां को उपराज्यपाल तथा लखपत राय को दीवान नियुक्त किया गया। किंतु जनवरी में निर्धारित यह शासन प्रबंध अल्पकालीन रहा, क्योंकि मार्च 1748 में सरहिंद के समीप दुर्रानी की पराजय हो गई। दिल्ली सरकार के वजीर कमरुद्दीन, जो कि याहिया खां के ससुर थे, ने अपने पुत्र मीर मन्नू को लाहौर का राज्यपाल बना दिया। मीर मन्नू ने दीवान कौड़ामल को अपना मंत्री बनाया। दीवान कौड़ामल को सिखों के प्रति सहानुभूति थी, यद्यपि मीर मन्नू उन सिखों के विरुद्ध थे जो पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता प्राप्त कर रहे थे। किंतु फिर भी उन्होंने दीवान कौड़ामल के परामर्श पर असंगत परिस्थितियों में उनका सहयोग प्राप्त किया। मार्च 1752 में दुर्रानियों के साथ युद्ध में दीवान कौड़ामल शत्रु दल के छल से कसूर के एक पठान बायाजिद खां द्वारा मारे गए। मीर मन्नू दुर्रानियों के साथ मिल गया और मंत्री बदल जाने के बाद वह स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस करने लगा। उसे सिखों से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, अतः उसने उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए। ज्ञानी ज्ञान सेन ने कसूर के दो अफगानियों मीर मोमिन खां और हुसैन खां द्वारा प्रदत्त दो घोर दंडों का वर्णन किया, किंतु सिखों के विरुद्ध क्रूरतम नीति स्वयं मीर मन्नू ने भी पंजाब के केंद्रीय जिलों में अपनाई थी। सैकड़ों सिखों को मारा गया और औरतों को साथ बलात्कार किया गया। सिखों की खोज बड़े जोर शोर से शुरू हो गई। उस समय की प्रसिद्ध कहावत है, जो मन्नू की क्रूरता प्रदर्शित करती है, मन्नू असांदी दात्री असी मन्नू दे सोए, जियो जियो मन्नू वधवता असी दूड़ सवाए होए। अर्थात, मन्नू हमारा हसिया है और हम उसकी फसल है। वह जितना अधिक हमें काटता है, हम उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। नवंबर 1753 में सिखों की खोज करते समय मन्नू घोड़े से गिरकर मर गया। पृष्ठ 24। मीर मन्नू की मृत्यु से लाहौर सरकार और कमजोर हो गई। सिखों ने लाहौर सरकार की दुर्बलता और अहमद शाह दुर्रानी के लगातार आक्रमणों से उत्पन्न संभ्रांति स्थिति का लाभ उठाया। उन्होंने युद्ध जारी रखा और आक्रमणकारी आते जाते रहे। सन 1757 में दुर्रानी के चौथे हमले के समय सिखों को दंड देने के लिए सेना का एक खंड अमृतसर भेजा गया। उस समय पवित्र कुंड को नष्ट कर दिया गया था। अहमद शाह ने अपने पुत्र तैमूर को अपनी समस्त भारतीय भूसंपत्ति का वायसराय बना दिया। सिख ही विशेष रूप से तैमूर का निशाना थे, किंतु वह सिखों की वर्धमान शक्तियों के कारण उनका मुकाबला नहीं कर सका। अप्रैल 1758 में सिखों ने मराठों के साथ लाहौर में प्रवेश करके तैमूर के बचे हुए सभी सैनिकों को मार दिया अथवा गिरफ्तार कर लिया। काबुल सरकार के अंतर्गत जालंधर ने के एक फौजदार अदीना बेग को, जो लाहौर का राज्यपाल बनना चाहता था, सिखों और मराठों दोनों से ही सहयोग प्राप्त हुआ। उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, किंतु वह इस पदवी पर केवल 4 महीने ही रहा। इस दौरान उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया, किंतु वह सिखों की बढ़ती हुई ताकत के कारण अपने इस प्रयास में विफल रहा। मराठों ने पहले ही सदा के लिए पंजाब छोड़ दिया था। अपनी असफलता के कारण वह सिखों के विरुद्ध हो गया और उनके साथ युद्ध के लिए उसने कुछ सेनाएं भेजी। सिखों के प्रति उसका विद्रोह सन 1758 सितंबर में उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। अहमद शाह ने सन 1759 अक्टूबर में पांचवी बार भारत पर आक्रमण किया। सिखों ने आक्रमणकारी के हमले का मुकाबला किया, किंतु शाह दिल्ली तक बढ़ता चला गया और पास के एक स्थान पर एक वर्ष बिताया। मार्ग में उसने मराठों से भी कुछ युद्ध किया। सन 1761 में पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अहमद शाह की जीत हुई, किंतु जब वह वापस लौट रहा था तो मार्ग में सिखों ने उसकी लूट का अधिकांश भाग छीन लिया था। अहमद शाह दुर्रानी के छठे आक्रमण के समय सिखों की बहुत मारकाट हुई। फरवरी सन 1762 में एक भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसे वड्डा गल्लूघार अथवा द्वितीय हत्याकांड कहा गया। कहा जाता है कि लगभग 10,000 सिख इस हत्याकांड में मारे गए। इस अवसर पर दुर्रानी के ने बारूद से अमृतसर स्थिर पवित्र मंदिर को उड़ा दिया था। अक्टूबर 1764 में अपने 7वें आक्रमण के समय अहमद शाह ने सिखों का समूल नाश करने का निश्चय कर लिया था। अतः उसने संपूर्ण देश को, जो कि सिखों का देश कहा जाता था, छान डाला। किंतु शूरवीर सिख अपने पथ पर बढ़ते रहे। दुर्रानी की सेनाओं के साथ छिटपुट लड़ाइयां होती रहीं। शाह की मृत्यु होने पर सिखों ने अप्रैल 1765 में बैसाखी के दिन अमृतसर में एकत्रित होकर लाहौर पर कब्जा करने का निश्चय किया। पृष्ठ 25। बुल्ले शाह ने पंजाब के राजनैतिक उतार चढ़ावों को बड़ी सूक्ष्मता से देखा। उन्हें मुगल एवं अफगानी शासकों द्वारा सिखों पर अत्याचार किए जाने के बावजूद भी लाहौर की गतिविधियों एवं सिखों की बढ़ती हुई ताकतों के विषय में ज्ञात था। उन्होंने नादिर शाह और अहमद शाह की सेनाओं को देश का विनाश करते देखा था। औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों की क्रूर नीतियों का भी उन्हें आभास था। वह एक अति जागरूक संत थे, इसलिए हमें उनके काफियों में तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। उलटे होर जमाने आए, का लगड़ नू मारन लगे चिड़िया जुर्रे खाए, अरा किया नू पाई चाबक पौंदी गड्ढे खुद पवाए, बुल्ला हुकुम हुजूरो आया तिसनु कौन हटाए, उल्टे होर जमाने आए। अर्थात एकदम उल्टा समय आ गया है। कौवों ने गिद्धों को मारा है और चिड़िया बाजों को खा गई। घोड़ों को तो चाबुक मारे जा रहे हैं और गधों को गेहूं की हरी हरी बाले खिलाई जा रही हैं। बुल्ले का कथन है कि हुजूर अर्थात परमात्मा के आदेश को कौन बदल सकता है। सानू आ मिल यार पियारिया, जत अपनी अपनी पै गई, धी मानू लूट के ले गई, मुंह बाहर वीनाम सदा पसारिया। सानू आमिल यार पियारिया, दर खुल्हा हशर अजाब दा, विच हविया दोसक मारिया। सानू आमिल यार पियारिया, बुल्ला शाह मेरे घर आवसी, मेरी बल्दी भाह बुझावसी, इनायत दमदम नाल चितारिया, सानू आमिल यार पियारिया। अर्थात हे प्रियतम हमसे आकर मिलो, प्रत्येक मनुष्य स्वार्थ सिद्धि में लगा है, बेटी अपनी माँ को ही लूट रही है, 12वीं शताब्दी अर्थात हिजरी युग का उदय हो गया है, हे प्रियतम आकर हमसे मिल जाओ, कष्टों और कब्र से उठने का द्वार अब खुल गया है तथा पंजाब की स्थिति और खराब हो गई है, ठंडी आहों और हत्याओं से पंजाब शिथिल हो रहा है, हे प्रियतम आकर हमसे मिल जाओ। इनायत अर्थात खुदा मेरे घर पृष्ठ 26 में प्रवेश कर कष्टों की इस प्रचंड अग्नि को शांत कर देंगे, मैं तो खुदा को हर सांस में याद करता हूँ, हे प्रियतम आकर हमसे मिल जाओ। मुगलाम जहर प्याले पीते, भूरियां वाले राजे कीते, सब अशराफ किरण चुप कीते, भला उन्ना नू झाड़ियां ए, रहो रहो वे इश्का मां मारिया ए, कहो किसनू पार उतारिया ए। अर्थात मुगलों ने जहर के प्याले पिए हैं, कंबलधारी जाटों को राजा बनाया गया है, सभी शरीफ लोग चुपचाप घूम रहे हैं और आप उनकी उपेक्षा कर रहे हो, हे इश्क तूने दूर रहकर मुझे शोकग्रस्त बना दिया है, बता तूने किसको पार लगाया है। उपर्युक्त उक्ति में मुगलों की क्रूरता और खुरदरे कंबल ओढ़ने वाले लोगों की विजय का स्पष्ट वर्णन है, यह सिखों की ओर संकेत है। दूसरे कथन में पंजाब की बिगड़ती हुई स्थिति अहमद शाह और तैमूर जैसे आक्रमणकारियों द्वारा की गई हत्याओं तथा पंजाब के राज्यपालों द्वारा सिखों के विनाश का संकेत है। यह परोक्ष रूप में हकीकत राय और भाई मनी सिंह अर्थात 1735 ईसा पूर्व, भाई तरु सिंह 1745 ईसा पूर्व और शाह बाज सिंह एवं शाह बेग सिंह 1746 ईसा पूर्व जैसे शहीदों की निष्ठुर हत्याओं की ओर भी इंगित करती है। छोटे बड़े सभी हत्याकांडों ने भी बुल्ले शाह का ध्यान अपनी ओर अवश्य ही आकृष्ट किया होगा। समाप्त।